अब आगे चलते हैं आज के पारे पे, फिर इंशाल्लाह बीच में आपको किसी एक मौके पे नबी सल्लम के अखलाक हसना के बारे में भी बताया जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहमतुल आलमीन थे। पारे का मरकज़ी मज़मून क्या है? अम्बिया कराम की दुआएं और कौम की गफलत। कुछ हालत आज भी ऐसी ही बनी हुई है। पिछले पारे से अगर इसका हम रब जोड़ें तो हमने पीछे सूरत तौहा पढ़ी, और सूरह तौहा में हमने ना सिर्फ यह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, बल्कि उसमें आखिर के करीब हमने पढ़ा कि वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, कि जिसने हमारी नसीहत से मुंह फेरा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी और वो क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। यानी कौमें जब अपने पास आई भी हिदायत की कदर नहीं करती, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसका हक नहीं अदा करती, तो अल्लाह ताला फिर उनकी सलाहियतों को सल्ब कर देता है। इस पारे के आगाज़ में ही सूरत अंबिया है और उसके शुरू में ये मौजू आएगा, इक्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम की सूरत में। सूरत अंबिया में 17, यानी अब हम सूरत अगर शुरू करते हैं ना तो थोड़ा उसका इंट्रो लीजिए, 17 यानी 17, 57 जो भी आप नाम कह लें, नबियों का तذकरा है, इसीलिए सूरत का नाम अंबिया है। मक्की सूरत है, इसमें आम तौर पे वही तीन मजमून तौहीद, रिसालत और आखरत है। और इन 17 का तذकरा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाले लोगों को समझाया गया कि जिस तरह पिछले अंबिया कराम इंसान और बशर थे, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर हैं और इंसान हैं। तो पहली बात तो ये समझ आ गई सूरत में हमें कि नबी बशर होता है, फनूर नहीं होता। फिर दूसरी बात इससे पता चलती है कि किसी को अपने इल्म का गर्रा नहीं करना चाहिए कि मुझे सब आता है, और अगर कोई आपसे कुछ पूछे और आपको नहीं आता तो आपको मेरी इज्जत का मसला है, शर्म आती है, वो है नहीं। फसलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, आयत 7 में। फिर आयत 22 में तौहीदे बारी के दलाइल हैं। फिर वादा मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आयत 35 में। और फिर आमाल नामों के वज़नी होने की बात है, आयत नंबर 47 पे। वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा ला तुज़लमु नफ्सुन शैया। फिर आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आयत 51 से शुरू होता है। फिर उनसे कुछ सवाल जवाब है, बुतों के तोड़ने की कहानी इसमें है, आग के गुलो गुलजार हो जाने की कहानी इसमें है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह की रहमतों का तذकरा इसमें है। फिर इसके बाद हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मामले में इख्तलाफ़ राय हुआ तो वो किस्सा है इसमें 78 आयत पे। फिर इसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आयत 83 में कि कैसे अन्नी मस्सनी दुर्रुवान तरहमुर राहमीन, कहने वाले बीमारी का तذकरा नहीं अपनी कमज़ोरियों का तذकरा किया। फिर इसमें हज़रत यूनुस की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन आने वाली है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा जाता है, आयत 107 पे। वहाँ आपको अख़लाक़े नबी का इंशाल्लाह एक किस्सा सुनाऊंगी। फिर इसके बाद सूरत हज शुरू हो जाएगी। सूरत हज में भी आम तौर पे हज के अमाल और बुनियादी अरकान बयान किए गए, इसीलिए इसको सूरत हज कहते हैं। और ख़ास तौर पे मक्का के करीब और मक्का में मौजूद होते हुए ये चीज़ें देखना सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सूरत हज का मेन थीम पता क्या है? हज और क़यामत। और जैसे मैंने आप इब्तिदा में कहा, रमज़ान में इतना इज्तिहाम है, इतना रश है, हज में कितना होगा? वहाँ भी सफ़ेद कफन पहनाते हैं, यहाँ भी सफ़ेद अहराम होता है। वहाँ भी जाने वालों को अक्सर लोग फूल पहनाते हैं, यहाँ भी हज और उम्रे पे आने वालों को लोग फूल पहनाते हैं। इधर भी छोटे छोटे बच्चों को माएँ घरों में छोड़ के आ जाती हैं, उधर भी जब मौत का वक्त आना है तो किसी को नहीं पता चलना कि घर में बच्चा छोटा है कि बड़ा है, तो क़यामत की हौलनाक है। फिर आयत 5 में मरने के बाद जीने के दलाइल, बास बादल मौत का तذकरा है। फिर दुनियावी फ़ायदों के लिए जो लोग ईमान कबूल करते हैं, आयत 11 बड़ी अहम है जिसमें निफाक पे भी बात आती है। फिर आयत 15 में हासिदीन का गैस और गज़ब में जलना दिखाया जा रहा है। अल्लाह के नबी से हसद करते थे लोग, बज़ाहिर वो मुखालफत करते थे और उनको भी नहीं पता था, बल्कि उनके कॉल कुरान में कई जगह है, अबू जहल के भी है ना, कि अब ये हुआ वो हुआ, हमने उस कबीले से ये कहा वो हुआ, अब वो कहते हैं हमारा नबी है तो क्या अब हम भी उसकी बात मान ले। इतनी तकाबुल था। बनी इसराइल यहूद ने भी आपसे हसद किया और मुशरिकी ने, मक्का के कुछ लोगों ने तो अटली ज़रूर किया। फिर इसके बाद वो खूबसूरत दुआएँ कि जिसमें काबतुल्ला की तामीर के दौरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पे दुआएं, फिर कुर्बानी के पूरे दिन कब कर, यानी ये वो सूरत है जिसमें हज और कुर्बानी के काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स हमें दिखते हैं, फिर कुर्बानी का मकसद लन यनालुल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा, और पहली दफ़ा मुसलमानों को जो जिहाद की इजाज़त मिली थी 13 साल के सब्र के बाद, वही सूरत में 39 आयत है, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। फिर इसके बाद सूरत के एंड की तरफ जब चलते हैं तो उसमें इस्लामी रियासत के अगराज व मकासद आयत 41, और वो इंशाल्लाह जहाँ पढ़ेंगे कि एक मुसलमान हुक्मरान का क्या जिम्मा है कि वो नमाजों की पाबंदी करवाएगा, ज़कात का निज़ाम फाइज करेगा, नेकी के कामों को कम देगा और गुनाहों से रुकवाएगा, और इसी तरह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तसल्लियाँ आयत 52 में देते हुए आयत 73 से ऑनवर्ड शिर्क के लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल है जिसको मक्खी वाली मिसाल से आप याद रखते हैं अमूमन, और फिर दीन में कोई हरज नहीं, और फिर पारे की आखिरी आयतें, अल्लाह करे कुछ वक्त हो और हम उस पर बात करें, उम्मते मोहम्मदिया की फजीलत और उनको दिए हुए एजाज़ और काम। इतना कुछ जब आपको इतने से वक्त में लेना हो तो सिर्फ अल्लाह की तौफीक से ले सकते हैं। तो पढ़िए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर नींद आ रही है तो मुंह धो लीजिए, लेकिन सोचिए कि हमें क्या दौलत मिलने वाली है और अल्लाह ताला का ये कलाम हम कहाँ बैठकर सुन रहे हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलति मोरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है इसे वो खेल कूद में ही सुनते हैं। जरा सोचिए, कुरान पढ़ा जा रहा होता है, लोग खेल कूद रहे होते हैं, बातें चीतते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ क्या है हमारे पास मसरूफियात कि हमारे पास फुर्सत नहीं। अजान हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, कुरान कोई पढ़ रहा होता है तो बातें हो रही हैं, कोई कुरान की दावत दे रहा होता है तो बातें बातें, खेलते कूदते हैं, बल्कि इनके दिल तो गाफिल हैं। और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियाँ की कि वो तुम ही जैसा इंसान है, फिर क्या वजह है कि तुम आंखों देखे जादू में आ जाते हो। इस पूरी सूरत में आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाकदरी की थी ना मक्का वालों ने, उसका भी बहुत तذکرہ मिलेगा। काला रब्बी यालमुल कौल, पैगंबर ने कहा मेरा परवरदिगार हर इस बात को जो ज़मीन व आसमान में है बखूबी जानता है, वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि ये कहते हैं कि ये कुरान हैरान कुन ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि इसने अस खुद इसे घड़ लिया, बल्कि ये शायर है, वरना हमारे सामने ये कोई ऐसी निशानी लाते जैसे अगले पैगंबर भेजे गए थे। इनसे पहले जितनी बस्ती हमने उजाड़ी सब ईमान से खाली थी, तो क्या अब ये ईमान लाएंगे, यानी जब पहले नहीं लाए तो अब ये कैसे लाएंगे। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन, तुझसे पहले भी जितने पैगंबर हमने भेजे सभी मर्द थे जिनकी तरफ हम वही उतारते थे, बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें इल्म ना हो। हमने इनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं और ना वो हमेशा रहने वाले थे, फिर हमने इनसे किए हुए वादे सच्चे किए, इन्हें और जिन जिन को हमने चाहा निजात अता फरमाई और हद से निकल जाने वालों को गारत कर दिया। अल्लाह अपनी सुन्नत बता रहे हैं, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। ज़रा सा कान लगा कर सुनिए, आपकी आयत आ गई, क्या यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाजिल फरमाई जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र किया या जिसमें तुम्हारा जिक्र है, फिर भी तुम अक़ल नहीं रखते। इस किताब में आपका मेरा अपना जिक्र है। इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी अपने बारे में जान के होती है, अपनी तारीफें सुनना, आपको लोग क्या कह रहे हैं, आप अपने बारे में इंसान बहुत सेंसिटिव होता है। इसी तरह अपनी बुराई भी नहीं सुन सकता, 10 लोगों को लोग बुरा कहते रहे, लोग माइंड नहीं करते, जब लोग आपको बुरा करते एकदम आप भड़क उठते हैं ना, सफाइयाँ पेश करते हैं। ये कुरान आपकी अपनी बातें हैं, और आप देखिए कहीं आपका नाम लिखा जाए ना तो लोग उस पेपर को संभाल लेते हैं, अखबार में कोई खबर छप जाए लोगों को दिखाएंगे, फ्रेम करेंगे, किसी बड़े बंदे के साथ हाथ मिला रहा है कोई तो ऐसे। ये कुरान फी ही ज़िक्रुकुम, कुरान का टॉपिक इंसान है, और हम कितनी गफलत से इसको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमारा दिल खोल दे। पकम कसम नमिन करिया, और बहुत सी बस्ती हमने तबाह कर दी जो जालिम थी, और इनके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया, जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया यानी महसूस किया अजाब को, तो लगे इससे भागने, भाग दौड़ ना करो और जहाँ तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं वापस लौटो, और अपने मकानात की तरफ जाओ ताकि तुमसे सवाल तो कर लिया जाए। बड़ी डराने वाली आयत है, अगर अरबी आयत ना पढ़े तो मज़ा ही नहीं आता। कैसे अपने घरों में बैठे हुए थे और एकदम अल्लाह की पकड़ आई, कहीं जलजला आ गया, सैलाब आ गया, आग लग गई, कोई भी जहन में ले आए और भागने लगे तो कादर अल्लाह तरकुजूवर जो इला मा उतरिफ तुम फी। मत दौड़ो, भागो अपने उन मकानात की तरफ जाओ जहाँ बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे थे, बड़ी आसूदगी से तुम गुजारते थे जिंदगियाँ, जो घर तुम्हें बहुत ही अजीज थे। वहीं लौट जाओ अपने मकानात की तरफ। क्यों? लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे सवाल तो कर लिया जाए। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कहने लगे हाय हमारी खराबी, बेशक हम जालिम थे, यानी हमारा अपना ही कसूर था। फिर तो इनका यही कॉल रहा यहाँ तक कि हमने इन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी पड़ी आग की तरह कर दिया। कल तक बहुत बोलते थे नबियों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये शरीयत का मसला, ये औरतों के हकूक वाला, और आज ऐसे हो गए जैसे बुझे हुए अंगारे। ये जो खामे दीन का लफ्ज़ है ना, यानी बड़े बनने वाले थे लेकिन अल्लाह ने उनको क्या कर दिया, बुझती हुई चिंगारियाँ बना दिया। वमा खलक न समा वल अर्त वमा बैना हुमा लाइबीन, हमने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया। अगर हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास से ही बना लेते, अगर हम करने वाले ही होते। बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, पर सच झूठ का तोड़ होता है और वो इसी वक्त नाबूद हो जाता है। तुम जो बातें बनाते हो वो तुम्हारे लिए बायस खराबी हैं। आसमान और ज़मीन में जो है इसी अल्लाह का है, और जो इसके पास है यानी फरिश्ते, वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। क्या इन लोगों ने ज़मीन की मखलूकात में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो ज़िंदा कर देते हैं? अगर आसमानों ज़मीन में सिवाय अल्लाह ताला के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह ताला अर्श का रब है, हर उस वसफ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं और सब इसके आगे जवाब दे हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? इनसे कह दो लाओ अपनी दलील पेश करो, ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की दलील। बात यह है कि इनमें अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इस वजह से मुंह मोड़े हुए हैं। क्या खूबसूरत आयतें, क्या प्यारी बातें। आइए ज़रा तदब्बुर और अमल के नुक्ते नोट करते हैं। आयात पे अमल क्या है? सुबह शाम के अज़कार को पढ़ना है, और ये अज़कार हमारे लिए हिफाजत का मजबूत कला है। रोज़ाना के अज़कार में से किसी एक आयत या दुआ पे गौर व फिक्र करें। दुआ करें कि आपका घर और अल्लाह की दी हुई नेमतें अल्लाह की इताअत में आपकी मददगार बन जाएं। ये बहुत ज़रूरी दुआ है। कुरान पाक से रहनुमाई हक का तालिब अमल करने के लिए दलील का मुतालबा करता है, अपने मद्दे मुकाबिल को आजिज़ करने के लिए नहीं। याद रखिए, जब तबलीग में मुकाबलेबाजी आ जाती है और दूसरे को छोटा करना, खुद को बड़ा करना, तो सारी तासीर और सारा असर ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी आयत इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम, ज़रा सा खुद से पूछिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर कह दें कि आपके हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, आपके दिन गिने जा चुके हैं। आमतौर पे कैंसर जैसे मर्ज के आखिरी स्टेज पे लोग कह देते हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया अब 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन है। चलो वो तो फिर भी अच्छा है, डॉक्टर ने उसको 1 दिन तो कह दिया, हमें तो 1 सेकंड का भी नहीं पता कि कैंसर से किसी ने मरना है या हादसे में मर जाना है। लेकिन कभी आपने, मैंने सोचा, पिछले रमज़ान में हम अपनी मौत से इस रमज़ान की निस्बत 1 साल दूर थे और आज 1 साल करीब हो गए। कभी सोचिए, आप अपनी मौत का सोचिए। हर नमाज के बाद हरम में जनाजा नहीं है? यहाँ आकर जो नेकियों के मौके, उसमें एक प्लस पॉइंट नमाज जनाजा है, एक किरात अजर है। और आप देखिए, हमारे लोगों बेचारों को पता ही नहीं है, बातें शुरू होते मर्द नहीं कहीं पढ़ते, औरतों को तो बेचारियों को पता ही नहीं है कि ये नमाज भी पढ़ी जाती है। जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं बताती हूँ, अम्मा पढ़ लें, आज हम पढ़ेंगे तो कल कोई हमारी भी पढ़ेगा, और आपकी भी किसी दिन पढ़ी जानी है। एक दिन लोगों ने आपके मरने पे खाने खाने हैं, एक दिन आपके मरने की आवाज़ें लगनी है पूरे ख़ानदान में, फिर सारी गाड़ियाँ निकल आनी है, जो कभी ना मिले ना कुछ बरते ना कोई लेन ना दे, उन्होंने भी आने, चाहे शक्ल दिखाने को आए, कुछ मोहब्बत के लिए भी आएंगे। चलो एक दफा आखिरी दफा देखा है, अब क्या बचता है, हो तब चिड़िया चुग गई खेत। सारी जिंदगी के रूठे नाराज भाई बहन एक दूसरे के मरने के ऊपर फिर जरा खड़े होते हैं। फिर दीनी मामलात में शुबे के इजाले के लिए शरई इल्म हासिल करना जरूरी है। गौर व फिक्र की बातें, जिसको क्यामत के आने का यकीन हो गया, इसकी आरजुएं काम हो जाएंगी। पक्की बात है, अपनी आरजुओं से पहचाने खुद को। ख्वाहिशात की लिस्ट लंबी है कि छोटी हो रही है दिन ब दिन। गाफिल दिल वाले गफलत की वजह से अल्लाह के अहकामात में गौर व फिक्र नहीं करते। हर एक चीज पे अपना हिसाब, किसी को ना सोचे, ना सास को, ना नंद को, ना देवर को, ना जेठ को, सिर्फ अपने आप को सोचिए कि मेरा क्या मामला है। तालीम देना और अपने इल्म के मुताबिक जवाब देना अहले इल्म पर फर्ज है। दीने हक के इल्म से महरूमी की वजह हक से रूगरदानी है। दौरे कुरान में भी इतने सबक मिल जाए और क्या चाहिए, सिर्फ तर्जमा पढ़ के हमें एक खाना पूरी तो नहीं करनी, कुरान ही काफी है। शर्त एक है कि समझ आता हो, मसला ये कि समझ नहीं आता। तर्जमा समझ आ रहा होता लेकिन तवज्जो तो उस वक्त सारे उसके मुश्किल लफ्जों में होती है। तो इसलिए इन सारी चीजों को सुनते वक्त कहिए अल्हम्दुलिल्लाह नेमती दौरतुल कुरान। अल्लाह ने हमें कुरान को और इस कुरान के दौरे को सुनने की तौफीक अता फरमाई। आगे चलते हैं आयत नंबर 25 से। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल, आपसे पहले भी जो रसूल हमने भेजे उनकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद है बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। लिख लीजिए कॉमन पॉइंट हर नबी की दावत का, ला इलाहा इल्लल्लाह। वक़ालु तख़ज़र रहमान वलदा, मुशरिक लोग कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है। गलत है, इसकी ज़ात पाक है, बल्कि वो सब इसके बाइज्जत बंदे हैं। ला यस्बिकूनहु बिलकौल, आपको इस सूरत में फरिश्तों का भी बहुत तस्करा मिल रहा है। किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते, बल्कि इसके फरमान पर कारबंद हैं। वो इनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाकिफ़ है। वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुस उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। बहुत हैबत इलाही से लर्जों तरसा हैं। इनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ, तो हम इसे दोजख की सजा दें। हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि ये सब आसमानों जमीन बाहम मिले हुए थे? आपको इस सूरत में साइंस के बहुत सारे राज दिख रहे हैं, यानी कुरान और कायनात के राज साथ साथ चल रहे हैं और दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन जिस रब ने कुरान दिया उसी ने साइंस के कवानीन बना दिए। तो इन सारों को इकट्ठा करें तो इसको देखकर कई लोग बिग बैंग थ्योरी की भी बातें करते हैं और बहुत कुछ इन आयतों पे कहा गया। फिर हमने इन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला न सके, और हमने इसमें कुशादा राहें बना दी, क्यों? लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हिदायत हासिल करें। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। पहाड़ी इलाकों में जब ट्रेन गुजर रही थी तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि सड़क तो है ही नहीं, और मज़ा मुझे उसमें आता है क्योंकि वो पुराना मक्का लगता है। कल हम ट्रेन पे आए, कभी आप में से भी सुनने वालों को मौका मिले तो सफ़र कीजिए। जद्दा से मक्का की ट्रेन तो बहुत ही मुख्तसर सी है ना, लेकिन सारी पहाड़ों में से गुजरती है, और ट्रेन के बिल्कुल करीब पहाड़ तो, और फिर पुराने घर भी दिखे पहाड़ों में बने हुए, तो लगे कि हम नबी सल्लम के दौर के मक्का में पहुंच गए हैं। अब वाला मक्का तो खैर वो है ही नहीं है ना जो वो था, और आज का तो मदीना भी वो नहीं, और आज का तो जद्दा भी वो नहीं, लेकिन पुरानी चीज़ें देखकर वाकई नबी सल्लम और सहाबा कराम का ख्याल आता है। तो अल्लाह ताला इन नेमतों की कदर की तौफीक दे। वजअलना समा सक़फ़ा महफूज़ा, फिर थोड़ी सी साइंस की बात, आसमान को महफूज छत भी हम ही ने बनाया, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान नहीं धरते। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें से हर एक अपने मदार में तैरते फिरते हैं। आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गए तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे? मैं खामोश रहती हूँ, आप सिर्फ इस तर्जुमे पे गौर कीजिए। और वो लोग जो नबी सल्लम के लिए लफ्ज़ मौत गुस्ताखी समझते हैं, यहाँ तो सारे हाजिर के सीगे, खिताब के सीगे करके नबी को कहा गया है। वमा जलना ली बशरे मिन कबलिकल खुल्द अफाई मित तफहुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना वही ना तुर जाऊन, हर जानदार मौत का मजा चखने वाली है या चखने वाला है। हम बतरीके इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई और भलाई में मुबतला करते हैं, और तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। लिखे हर नेमत इम्तिहान का पर्चा। जब आप अपने ऊपर लेकर इन चीज़ों को फील करते हैं ना, फिर समझ आती है। तो अपने बच्चों का, अगर आप बच्चे नहीं हैं अभी आपके, तो अपनी बाकी नेमतों को लिखिए। मेरे भाई इम्तिहान के पर्चे, मेरा हुसन इम्तिहान का पर्चा, मेरा सेलफोन इम्तिहान का पर्चा। अपने बच्चों के नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बहन भाइयों के लिख लीजिए, और सबसे बढ़ के पोते नवासों के नाम लिखिए जो दिल में रहते हैं, जिनके अंदर पढ़ के कई दफ़ा हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। क्या करना है जी, क्या करें, बच्चों के बच्चे। पहले अपने बच्चे पाले, अब बच्चों के बच्चे पालने हैं। तो हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, मूसा इम्तिहान का पर्चा, मोहम्मद इम्तिहान का पर्चा, वायल इम्तिहान का पर्चा। बस इन पर्चों में पास होना ये कामयाबी है हमारी। ये गोल बनाइए, अल्लाह इन्हीं नेमतों में रख कर हमें पास कर दे। इसी तरह खुशियाँ और गम दोनों पर्चे हैं इम्तिहान के, और गमों और परेशानियों के पर्चों में फिर भी पास हो जाते हैं लोग, पासिंग मार्क्स ही सही। असल जो फेल होता है ना बंदा, वो खुशियों के पर्चों में होता है। अल्लाह सब में ही पास कर दे। अब दोबारा आप पूरी सूरत को पढ़ें, आ चुके थीम भी नबी सल्लम ही की हस्ती है ना इस साल। तो इस पारे को जब मैं तैयार कर रही थी तो मैं सोच रही थी इतनी बातें मेरे नबी को लोग कहते थे, मुझे इस दफ़ा कुरान को पढ़ के जितना एहसास हुआ पहले कभी नहीं हुआ। और ये पूरी सूरत जो आपके सामने ना अंबिया, आपको पता है 17 नबियों के हालात क्यों सुना रहे। नबी अब गम ना करें, लाए आपको यूनुस की कहानी सुनाते हैं। नबी नबी दिल में अल्लाह ना कीजिए, अब हम आपको अय्यूब की कहानी सुनाते हैं। ये कहानियां सुनाई जा रही हैं। अब आप जरा से दर्द को तो महसूस कीजिए। वह इजारा कल्लजी न कफरू यत्तखिज़ू न का इल्ला खुजुआ अहाज़ल्लजी यज़कुरू आलिहतकुम वहुम बिज़िक्र रहमानिहुम काफिरून। अल्लाह करे सिर्फ अरबी से समझ आ जाए, टोन दिखाना चाहिए आपको। सुनिए उर्दू, ये मुनकरीन तुझे जब देखते हैं तो तुम्हारा मजाक ही उड़ाते हैं। कही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वो बदरुद्दुजा, वो सिराज मुनीर, वो मोहम्मद अरबी, वो हुस्ने अखलाक के आला दर्जों पे रहमतुल आलमीन। लोग उनको देख के मजाक उड़ाते थे और क्या कहते थे, क्या यही है वो जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से करता है और खुद ही रहमान की याद के बिल्कुल ही मुनकर है। यानी ये बातें सुननी पड़ती हैं और इसका मज़ा बड़ा आता है। वैसे जब नजरें अल्लाह पे लगी हो ना तो ये बातें बदमज़ा नहीं करती बंदे को, बल्कि अंदर छुट्टी 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 एक तस्कीन आने लग जाती है कि नबियों के रास्ते भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते थे, इंसान जल्दबाज मखलूक है, मैं तुम्हें अपनी निशानी अभी अभी दिखाऊंगा, तुम मुझसे जल्दबाजी ना करो। कहते हैं अगर सच्चे हो तो बता दो कि ये वादा कब है। काश ये काफिर जानते कि इस वक्त ना तो ये काफिर आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और ना ही अपनी पीठों से, और ना इनकी मदद की जाएगी। हाँ हाँ वादे की घड़ी इनके पास अचानक आ जाएगी और इन्हें हक्का बक्का कर देगी। फिर ना तो ये लोग इसे टाल सकेंगे और ना जरा सी भी मोहलत दिए जाएंगे। दोबारा देखिए, एक एक आयत के ऊपर देखिए, वलकद इस्तुख्ज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले भी रसूलों के साथ हंसी मजाक किया गया। हक की पहचान, इससे लोग हंसी मजाक करते हैं। बस हंसी करने वालों को ही इस चीज ने घेर लिया जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। इसको भी नोट करिए, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना उसमें जरूर गिरता है। या तौबा कर लीजिए या इंतजार कीजिए। इनसे पूछिए कि रहमान के सिवा दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन कर सकता है। बात यह है कि ये लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुए हैं, क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा ले। कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता और ना कोई हमारी तरफ से साथ दिया जाता है, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादों को जिंदगी के सरो सामान दिए, यहाँ तक कि इनकी मुद्दत उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घिटाते चले आ रहे हैं। क्या आप वही गालिब हैं, कह दीजिए मैं तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूँ। मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि इनको आगाह किया जाए। अगर इन्हें तेरे रब के किसी अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठेंगे क्या, या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनाहगार थे। अब देखिए, ये भी वो ही करते हैं जिनको अल्लाह मौका दे, वरना लोग ऐसे मौक़ों पे भी हाय गौश ही कह रहे होते हैं। पिछले एक दो माह के बीच में एक आग लगी थी कैलिफोर्निया में, पूरी बस्तियां जल गई। मैं सोचती उसके बाद भी रब नहीं याद आया। बहुत सारों को आया होगा, याद रखिए हर आजमाइश के बाद जरूर लोग इस्लाम के करीब आते, अल्लाह का कुर्ब लेते, लेकिन अमूमियत का हाल है वो कहते नहीं ये तो नेचुरल बात है, ये तो होता ही है, इट्स फाइन, ये भी होगा वो होगा। अल्लाह सुबहाना तआला दुनिया में ये छोटे छोटे हालात कायम करके उस बड़ी क़यामत के लिए लोगों के जहन बनाते हैं। उस दिन क्या होगा, अभी शायद को बिल्कुल अपने ऊपर लेकर सोचिए, कोई अपनी ऐसी नेकी सोचें जो आपको बड़ी मुश्किल लगी लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम कर लिया और किसी को बताया भी नहीं, यानी इखलास भी था और हालात भी मुश्किल थे। अब सोचिए वनदाउलमवाजीनलकिस्तलियामिलक़ियामतिलातुस्लमुनफ़सुनशैया, क़यामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ जुल्म भी ना किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम इसे ला हाजिर करेंगे और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले। क़यामत के दिन एक एक चीज़ तुलेगी, आपने नींद छोड़ी, आपको चलना पड़ा, आपको बैठना पड़ा, आप कई चीज़ों से निकल कर अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए जोड़े रखे, एक एक चीज़ का नापाई का हिसाब अल्लाह करके आपको देगा, फिर बंदा खुश होगा। हदीस में आता है कि आजमाइशों और जो बलाएं हैं ना उनकी कदर क़यामत के दिन आएगी जब पर्दा चाक हो जाएगा, यानी आज ज़िंदगी में कोई आजमाइश है तो हमें पता ही नहीं इसका क्या जर है। हज़रत इब्राहिम ने तो बीवी बच्चा छोड़ दिया, हम ज़रा सा डिस्कम्फर्ट हो जाए, हाय नहीं नहीं हमारा सोने का टाइम, हमारे घर वालों का सोने का जागने का, अभी नहीं वभी नहीं ये नहीं वो नहीं, हमारे जैसे नाजुक मिजाज लोगों ने क्या दीन लेना और क्या काम करने। हम तो हर वक्त अपनी नब्जें देखने वाले हैं, अल्लाह हमारे पर्दे रख दे। आइए ज़रा तदब्बर करते हैं आयत 25 से ऑनवर्ड, आयात पे अमल क्या है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपको तन्हाई और महफिल हर हालत में इससे डरने की तौफीक दे, क्योंकि अकेले में डरना सबसे मुश्किल है। लोगों में तो हमें पता होता है चार लोग हमें ताड़ रहे हैं, हम भी सीधे रहते हैं। लोगों में नेक बनना बहुत आसान है, अकेले में मुश्किल है, और ख़ास तौर पे आज का दौर, गैजेट हाथों में। आज के दौर में जिसने अपनी तन्हाई पाक कर ली वो वाकई मुत्तकी है। हाथों में जो मर्जी देखे, जो मर्जी सुने, जो मर्जी बोले, छोटा बच्चा जाके गंद बला देख ले कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा अपनी तन्हाइयों के अंदर अपने आप को चेक किया करें कि मैं क्या हूँ। उलमा की मौत दरअसल दुनिया की बेबरकती का सामान है, लिहाजा इनके इल्म से फ़ायदा उठा लीजिए। हदीस है एक एक करके हक कहने वाले आलिम दुनिया से जाते जाएंगे, बेहतरीन इंजाम उसी का होगा जो अपने दीन पर साबित कदम रहेगा। दुआ करें अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना, अल्लाह हुस्ने खातिमा करे हमारा। कुरान से रहनुमाई, दावत देने में अम्बिया कराम के तरीके से हिकमत और तदरीज अख्तियार करनी है। मोमिन इस दुनिया में रहते हुए हमेशा हालत आजमाइश में ही रहता है, यही चीज़ उसको सीधा रखती है। ज़रा आपको पता है आप कमरा इम्तिहान में, तभी तो आप वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे और हर चीज़ को सही तरह रखेंगे। दुनिया का सामान और इसकी जेब व जीनत अक्सर लोगों की गुमराही का सबब है। गौर व फिक्र की बात, खुशी के वक्त का शुक्र और गम के वक्त का सब्र आजमाइश का एक ही तरीका है, यानी जो खुशी में शुक्र कर जाए वो भी कामयाब और जो गम में सब्र कर जाए वो भी कामयाब। जल्दबाजी इंसान की फितरत में है, फिर इस फितरत से इसे इसलिए रोका जा रहा है कि इंसान अपने अंदर संजीदगी भी पैदा कर सकता है, यानी अल्लाह ने इंसान के अंदर अगर जल्दबाजी रखी है तो इम्तिहान ये है ना कि अब तुम इस पे काबू पाओ। जब इंसान को अल्लाह की दी हुई नेमतों पर लंबा अरसा गुजर जाए तो वो ये समझ लेता है कि ये नेमतें कभी जायल नहीं होंगी। आज हम भी तो अपने आप को यही कहते हैं ना, हमारे तो बाप दादा के भी अच्छे दिन थे, वो भी थे, हम तो जी खाते पीते, हम तो नवाबों की नस्ल से हैं। तो अल्लाह ताला बंदे को आजमा रहा होता है। इंसान दुनिया के फरेब में मुबतला होकर अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र से मुंह मोड़ लेता है। आप देखिए अंबिया कराम अपनी सारी जिंदगी में तज कर गए, जिंदगी तज कर दी, यानी आप आज कह सकते डिवोट कर दी, खास कर दिया, लोगों को मिल जाए फ़ायदा, हमारी खैर है, ये कर लें वो कर लें। लेकिन जब हम अपने ज़िंदगियों के नक्शों को देखते हैं तो हमें बहुत कमियां दिखती हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं, यकीन कीजिए कि एक वक्त आ रहा है कि शायद लोग 5 वक्त की नमाज को भी क्या कहेंगे, ये तो एक्सट्रीमिज्म है। अब 5 दफ़ा हम अपने दुनिया के काम काज छोड़ कर जाएं, ऐसी बातें तो आज भी सुनने में आ गई कि ये 5 वक्त मस्जिद में जाना ये टू मच नहीं है, फिर काम कब करेंगे? अपने लिए अमल का नुक्ता लिखें, जो काम मुश्किल लगे उसको ज्यादा करें, खुद ही आसान हो जाएगा। वो किसी ने कहा ना कि गुर्बत 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 हुआ है, तो उसने कहा कि जब कुछ और वक्त गुजर जाएगा तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं गरीब हूँ। तो बस जिंदगी का एक असूल, थोड़ा करने वाले थकते हैं, कभी कभी करने वाले थकते हैं, हफ्ते में एक दिन करने वाले थकते हैं, और जो रोज सुबह शाम कर लें वो कभी ना थकते ना वो अकते, कभी भी उनके लिए अल्लाह की इस नेमत में कमी नहीं आती। तो आज ये भी नियत कीजिए, दौरे कुरान और रमज़ान से कोई तोहफा लेकर जाइए। ख़ास तौर पे आप सबको कहूँगी कि जो ख़ास तौर पे उम्रे पे आते हैं, आज माशाल्लाह हमारे साथ उम्रे वाले लोग भी हैं ना, क्या दिल नहीं चाह रहा होता एक एक मिनट का इस्तेमाल करें? पैसा भी लगाया हुआ, फिर वो लंबी फ्लाइटें लेके आते हैं, फिर पीछे कितनी चीज़ों की अमेंडमेंट करके आए हैं। जिस तरह हज उम्रे के दौरान अपने वक्त पे और घड़ी पे और नमाज़ों पे टाइम रखते हैं, और अब तवाफ कर लूँ, अच्छा अब सही कर लूँ, अच्छा अब ये कर लूँ, अच्छा ये कर लूँ, बता रहा हूँ क्या कैसे बंदा गुजर जाता, कभी याद ही नहीं कि कभी किसी दुकान में झांका भी हो। इसको जाकर भी कीजिएगा, ये सिर्फ 10 दिन का उम्रा पैकेज लेकर नहीं आ पाए हुए, ये आपके उम्रे के पैकेज ज़िंदगी भर जाएंगे, ये तरबियती कोर्सेज हैं। तो अगर यहाँ से बाद में जाके फिर वही हो गया, यहाँ अगर 5 वक्त नमाज जमात से आप पढ़ सकते हैं तो घर जाकर क्यों नहीं पढ़ सकते? मस्जिदें हमारे सबके घरों के पास है, लेकिन रुझान नहीं है ना। और जो काम दूसरे करें ना वो हमें आसान लगता है, और जो दूसरे ना करें वो हमें भी मुश्किल लगता है। तो अल्लाह करे कि हमारी आदत बदल जाए।